पृष्ठ संख्या 268 अध्याय 13 भारत में मध्य पाषाण काल प्रागैतिहासिक अनुसंधान 19वीं शताब्दी में जब अपने शैशव काल में था उस समय पुरातत्व वेत्ताओं की यह धारणा थी कि पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल एक दूसरे से असंबद्ध थे, उनको जोड़ने वाली कोई कड़ी नहीं थी। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य में समय का एक लंबा अंतराल स्वीकार किया जाता था। इसका प्रमुख कारण यह था कि उस समय पुरापाषाण काल की समाप्ति तथा नवपाषाण काल के प्रारंभ के विषय में समुचित जानकारी नहीं थी, परंतु कालांतर में जो अनुसंधान हुए उनसे यह ज्ञात हुआ कि इन दोनों कालों के मध्य एक कड़ी थी जो दोनों को आबद्ध करके संयोजित करती थी। सन 1987 में फ्रांस की मास्त एजी नामक गुफा के उत्खनन के परिणाम स्वरूप पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल के मध्यवर्ती जिस काल की जानकारी प्राप्त हुई उस काल को संक्रांति का काल कहा गया, क्योंकि इस काल में न तो पुरापाषाण काल की विशेषताओं का पूर्ण रूप से त्याग किया गया था और नवपाषाण काल की विशेषताओं को भी पूर्णतया अपनाया नहीं गया था। यह काल दोनों ही कालों की विशिष्टताओं को समेटे हुए था। इस मध्यवर्ती काल को पुराविदों ने अनुपुरापाषाण काल, एपी पैलेलियोलिथिक आद्य नवपाषाण काल, प्रोटो नियोलिथिक और मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक आदि विभिन्न नामों से अभिहित किया। कालांतर में इनमें से मध्य पाषाण काल नाम सुप्रचलित एवं लोकप्रिय हो गया। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यूनानी भाषा में मेसोस का अर्थ मध्य होता है तथा लिथास का अर्थ पाषाण, पुरापाषाण काल। नौ पाषाण काल के बीच का काल होने के कारण इसको यह नाम प्रदान किया गया है। मध्य पाषाण काल के पाषाण उपकरण अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं, जिन्हें आकारगत लघुता के कारण लघु पाषाण उपकरण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के कालानुक्रम उत्पत्ति तथा विकास के संबंध में जैसे जैसे अन्वेषण और अनुसंधान होते गए वैसे वैसे नवीन प्रकाश पड़ता गया। मध्य पाषाण काल स्तरित की दृष्टि से पुरापाषाण काल के अंतिम चरण उच्च पुरापाषाण काल का परवर्ती है तथा नवपाषाण काल का पूर्ववर्ती है। मध्य पाषाण काल अपने उत्तर पृष्ठ संख्या 269 काल में नवपाषाण के समकालिक संस्कृतियों सांस्कृतिक काल के रूप में चलता रहा। यूरोप में मध्य पाषाण काल के उपकरणों का विकास उच्च पुरापाषाणिक उपकरणों से माना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में मध्य पाषाण काल के लघु पाषाण उपकरणों का क्रमिक विकास मध्य पुरापाषाण काल के लेवावा फलक उपकरणों से हुआ। भारत में मध्य पाषाण काल के उपकरणों का विकास किस प्रकार हुआ इसके विषय में कुछ समय पूर्व तक स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि उस समय लघु पाषाण उपकरण भूतल सरफेस से प्रतिवेदित थे, उनके पुरातात्विक स्तर क्रम के संबंध में उस समय निश्चित जानकारी नहीं थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कभी भारत के पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल के बीच में अंतराल का सुझाव दिया था। उनकी यह धारणा यूरोप के तत्कालीन प्रागैतिहासिक अनुसंधान से प्रेरित थी, क्योंकि उस समय यूरोप में इस प्रकार के अंतराल की परिकल्पना की गई थी। मध्य पाषाण काल की स्थिति के विषय में भारतीय पुराविदों में सहमति हो जाने पर भी इसके विकास की समस्या के समाधान होने में काफी समय लगा। बहुत समय तक मध्य पाषाण काल के फलक उपकरणों से इसका विकास निरूपित किया जाता रहा, क्योंकि भारत में उच्च पुरापाषाण काल की स्थिति संदिग्ध थी। 20वीं शताब्दी ईस्वी के 60 एवं 70 के दशकों में भीम बैठका, रेड़ी गुंटा, मध्य सोन घाटी तथा बेलन घाटी आदि में किए गए उत्खननों के फलस्वरूप इस समस्या पर नया प्रकाश पड़ा है। अब इस बात के साक्ष्य मिलने लगे हैं कि भारत में भी उच्च पुरापाषाणिक ब्लेड प्रधान उपकरणों से लघु पाषाण उपकरणों का विकास हुआ। उच्च पुरापाषाण काल के समाप्त होते होते विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन हुए। मध्य पाषाण काल को कालानुक्रम की दृष्टि से नूतन काल होलोसेंस के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस परिवर्तन की तिथि लगभग 10 अथवा 8 हजार ईसा पूर्व मानी जाती है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विश्वव्यापी था। नूतन काल की जलवायु लगभग आजकल की जलवायु की तरह थी। विश्व के हिमायित क्षेत्रों में हिम विगलन के फलस्वरूप जगह जगह पर साधन वन एवं जगह जगह पर सघन वन एवं घास के मैदान अस्तित्व में आए। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीपों के बहुत से क्षेत्र सघन वनों से घास के मैदानों में परिवर्तित हो गए। इस जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पेड़ पौधों के अतिरिक्त पशु पक्षियों पर भी पड़ा। मानव ने इस बदलते हुए वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालने का हर संभव प्रयास किया। पुरापाषाण काल के लोगों की ही भांति मध्य पाषाण काल के लोग जंगली फल फूल कंदमूल आदि का संग्रह अपनी उदर पूर्ति के लिए करते थे। जंगली घासों के दानों को भी एकत्र करना प्रारंभ किया गया। विशालकाय पशुओं के स्थान पर जंगली भेड़ बकरी हिरण खरगोश आदि सस्वभोजी पशुओं का शिकार किया जाने लगा। शिकार करने के लिए धनुष बाण का व्यापक पैमाने पर उपयोग होने लगा। पशुओं के शिकार के अतिरिक्त सरिताओं सरोवरों तथा जलाशयों से मछली पृष्ठ संख्या 270 मेंढक कछुआ केकड़ा आदि जलचरों को पकड़कर भी मध्यपाषाण काल के लोग अपनी क्षुधा शांत करते थे। लकड़ी की डोंगी के सर्वप्रथम निर्माण का श्रेय भी मध्यपाषाण काल के लोगों को दिया जा सकता है। हॉलैंड के पेस नामक मध्यपाषाणिक पुरास्थल से प्राप्त काष्ठ निर्मित डोंगी की रेडियो कार्बन तिथि 6250 ईसा पूर्व है। दक्षिण पश्चिम यूरोप के क्षेत्रों में मध्य पाषाण काल में कला के क्षेत्र में स्पष्ट ह्रास परिलक्षित होता है। अस्त्र शास्त्रों को अलंकृत करने तथा गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी करने का प्रयास प्रायः नगण्य रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में मध्य पाषाणिक लोगों को उदर पोषण में व्यस्त रहने के कारण संभवतः कला के लिए सुअवसर ही नहीं मिल पाया। भारत में इसके विपरीत साक्ष्य मिले हैं। भारत के विंध्य क्षेत्र में चित्रकारी से युक्त अनेक शिलाश्रय हैं। इन शिलाश्रयों के कतिपय चित्रों के वर्ण्य विषय मध्यपाषाणिक मानव के सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों से मेल खाते हैं, क्योंकि जंगली पशुओं का शिकार करते हुए तथा जंगली फल फूल आदि इकट्ठा करते हुए लोगों को चित्रित किया गया है। पश्चिमी तथा उत्तरी यूरोप में मध्य पाषाण काल में अनेक संस्कृतियों का विकास हुआ। मध्य पाषाण काल के विषय में इन क्षेत्रों में इतना अध्ययन हो चुका है कि मध्य पाषाणिक संस्कृतियों का वर्गीकरण विशिष्ट पुरास्थलों टाइप साइट्स के नामों के आधार पर किया जाता है। इनमें प्रमुख संस्कृतियां अधोलिखित हैं। 1 एजिलियन, 2 सावतेरियन, 3 तर्देनासियन, 4 मैग्लेमोसियन, 5 लानियन, 6 एस्तूरियन, 7 कैंपिनियन। पश्चिमी एशिया से भी मध्य पाषाण काल के संबंध में उल्लेखनीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। इस संदर्भ में फिलिस्तीन की नातूफियन मध्य पाषाणिक संस्कृति का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। नातूफियन संस्कृति के लोग अपने जीवन यापन के लिए हिरण के शिकार तथा मछली मारने पर मुख्यतः निर्भर थे। लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त हड्डी की बनी हुई मछली फंसाने की कटिया फिश हुक इनके उपकरणों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हड्डी के बेत में जड़े हुए कतिपय लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग हसिये के रूप में जंगली घासों को काटने के लिए संभवतः किया गया था। कतिपय लघु पाषाण उपकरणों में एक विशेष प्रकार की शस्य चमक कॉर्न ग्लॉस मिलती है। पृष्ठ संख्या 271, जिसके संबंध में अनुमान लगाया गया है कि जंगली घास के दाने इकट्ठा करने के लिए इनको काटते समय उनका रस लग जाने से इस प्रकार की चमक आई होगी। नातूफियन संस्कृति के पुरास्थलों से सील लोढ़े मिले हैं। अनुमानतः इनका उपयोग जंगली घास के दानों को पीसकर खाने के लिए होता रहा होगा। फिलिस्तीन में जौ तथा गेहूं जंगली घास के रूप में उगते थे। नातूफियन लोग किन घासों के दानों का संचय करते थे यह ज्ञात नहीं है। कालांतर में नवपाषाण काल में कृषि कर्म के माध्यम से अनाज के उत्पादन में इस प्रकार के क्रियाकलापों की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। रेखा मानचित्र 1 मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल। पृष्ठ संख्या 272। भारत में मध्य पाषाणिक अनुसंधान का इतिहास 100 वर्ष से अधिक पुराना है। सन 1867 में SEL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज किया था। उस समय से लेकर आज तक देश के विभिन्न भागों से लघु पाषाण उपकरण प्रतिवर्ष प्रतिवेदित होते हैं। असम तथा सिक्किम में लघु पाषाण उपकरण नहीं मिले हैं। मध्य गंगा घाटी को छोड़कर शेष गांगेय क्षेत्र में भी लघु पाषाण उपकरणों का अभाव है। मध्य पाषाण काल में मानव की जनसंख्या में वृद्धि हुई, फलतः नवीन क्षेत्रों में प्रवजन हुआ। भारत के प्रापाषाणिक मानव का निवास पर्वतीय तथा पठारी भागों तक ही सीमित था, जबकि मध्य पाषाणिक मानव ने अनिवासित क्षेत्रों में भी निवास करना प्रारंभ कर दिया था। भारत में मध्य पाषाणिक पुरास्थल अभी तक अधोलिखित विभिन्न स्थितियों से ज्ञात है। एक, खुले स्थान में स्थित पुरास्थल ओपन एयर साइट्स। दो, बालुकामय क्षेत्र सैंडी एरियाज। तीन, समुद्र तटीय क्षेत्र कोस्टल एरियाज। चार, शिलाश्रय एवं गुफाएं रॉक शेल्टर्स एंड केव्स। पांच, नदी तट पर स्थित पुरास्थल रिवर बैंक साइट्स। छह, झीलों के तट पर स्थित पुरास्थल लेक साइट्स। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में अभी तक भारत में जितना अध्ययन हुआ है उससे मध्य पाषाण काल के मानव की संस्कृति के विषय में उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त हो चुकी है, किंतु भारत का मध्य पाषाणिक संस्कृति का वर्गीकरण विशिष्ट पुरास्थलों के नाम के आधार पर नहीं किया जा सकता है। मध्य पाषाण काल की संस्कृतियों का वर्गीकरण अधोलिखित 6 क्षेत्रों में किया जा रहा है। एक, पश्चिमी क्षेत्र। दो, दक्षिणी क्षेत्र। तीन, मध्य क्षेत्र। चार, पूर्वी क्षेत्र। पांच, उत्तरी विंध्य क्षेत्र। छह, मध्य गंगा घाटी। मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण एवं उत्खनित पुरास्थलों के विवरण पर विशेष बल दिया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र से ज्ञात बहुसंख्यक पुरास्थलों में से सभी का वर्णन करना संभव नहीं है। पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र के मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को सम्मिलित किया गया है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में फैली हुई अरावली की पहाड़ियां राजस्थान को पश्चिम राजस्थान मारवाड़ तथा पूर्वी राजस्थान मेवाड़ इन दो भागों में विभाजित करती हैं। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में लूनी तथा उसकी सहायक बरसाती नदियों की घाटियों में मध्य पाषाण काल के अनेक पुरास्थल अवस्थित हैं। बाड़मेर जिले में स्थित तिलवाड़ा तथा पाली जिले में स्थित सोजात, जाडन, कनवास और धनेड़ी नामक पुरास्थल उल्लेखनीय हैं। पृष्ठ संख्या 273। अजमेर जिले में बूढ़ा पुष्कर नामक मीठे पानी की झील के पूर्वी तट के पास मध्य पाषाण काल का पुरास्थल स्थित है, जहां पर बहुसंख्यक लघु पाषाण उपकरण बिखरे हुए मिले हैं। पूर्वी राजस्थान में स्थित उदयपुर, चित्तौड़, टोंक, कोटा, झालार, पाटन, जयपुर, जोधपुर तथा भीलवाड़ा जिलों से मध्य पाषाणिक उपकरण मिले हैं। जयपुर जिले में झांभर झील के उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 40 किमी की दूरी पर स्थित नावा तथा गोविंदगढ़ के पास स्थित लेशुआ नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल उल्लेखनीय है। जोधपुर जिले के महत्वपूर्ण पुरास्थल बुजावर, चामू तथा लोरडिया आदि हैं। भीलवाड़ा जिले में स्थित नीम बहेरा, मंडपिया तथा बागौर प्रसिद्ध है। इसमें से बागौर का उत्खनन अपेक्षाकृत विस्तृत पैमाने पर किया गया है। बागौर पूर्वी राजस्थान के अभी तक ज्ञात मध्य पाषाणिक पुरास्थलों में सबसे महत्वपूर्ण है, जो बनास नदी की सहायक कोठारी नदी के बाएं तट पर भीलवाड़ा से पश्चिम दिशा में 25 किमी की दूरी पर भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागौर के लगभग 7 मीटर ऊंचे वायुजनित निक्षेप से निर्मित रेतीले टीले को स्थानीय लोग महासती कहते हैं। यह टीला पूर्व से पश्चिम 200 मीटर लंबा और उत्तर से दक्षिण 150 मीटर चौड़ा है। बागौर नामक गांव से 1 किमी पूर्व दिशा में स्थित इस पुरास्थल की खोज सन 1900 1867 में दक्कन कॉलेज पुणे के बीएन मिश्र एवं साउथ एशिया इंस्टीट्यूट हिडलबर्ग जर्मनी के एलएस लेसनिक ने की थी। सन 1968 से 1970 के मध्य पुणे विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग तथा राजस्थान के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के संयुक्त चित्र संख्या 3 बागोर पुरास्थल का विहंगम दृश्य वी एन मिश्र 1982 के सौजन्य से। पृष्ठ संख्या 274। तत्वावधान में बी एन मिश्र के निर्देशन में इस पुरास्थल का उत्खनन किया गया। 5 स्तरों वाले 1.50 मीटर से 1.75 मीटर मोटे जमाव को प्रारंभ में 3 सांस्कृतिक कालों में विभाजित किया गया था और ऐसी संभावना प्रकट की गई थी कि यहाँ पर वस्तुतः एक ही आधारभूत संस्कृति का उदय हुआ, जिसमें जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया वैसे वैसे नवीन सांस्कृतिक उपादान जुड़ते गए। किंतु बाद में इस काल विभाजन की नए सिरे से समीक्षा की गई, जिसके आधार पर विभिन्न सांस्कृतिक कालों के विभाजन में संशोधन किया गया। अब यह स्वीकार किया जाता है कि बागोर में 2 सांस्कृतिक कालों, 1 मध्य पाषाण काल और 2 लौह काल के पुरावशेष मिले हैं। दोनों के मध्य समय का लंबा अंतराल रहा होगा। प्रथम सांस्कृतिक काल को पुनः 2 उपकालों में विभाजित किया गया है। प्रथम उपकाल बागोर के प्रथम उपकाल का जमाव 50 सेमी से 80 सेमी के बीच मिला है। इस उपकाल के स्तरों से बहुसंख्यक लघु पाषाण उपकरण तथा पशुओं की हड्डियां मिली हैं। लघु पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए क्वार्ट्ज एवं चर्ट का मुख्य रूप से उपयोग किया गया है। अधिकांश उपकरण ब्लेड पर बने हैं। विषम बाहु, समलंब, चतुर्भुज, चांद्रिक, वाराग्र तथा स्क्रेपर आदि उल्लेखनीय हैं। क्रोट तथा फलक पर बने हुए स्क्रेपर तथा व्यूरिन अत्यल्प हैं। इस प्रकार बागोर के प्रथम उपकाल के मध्य पाषाणिक उपकरणों को मृद्भांड पूर्व के ज्यामितीय चरण से संबंधित किया जा सकता है। पत्थर के हथौड़े, सील, लोढ़े आदि यहाँ से प्राप्त अन्य पाषाणिक उपकरण पुरावशेष हैं। चित्र 4, बागोर मानव कंकाल प्रथम काल वी एन मिश्र 1982 के सौजन्य से। पृष्ठ संख्या 275। बागोर के प्रथम उपकाल से चीतल, सांभर, चिंकारा आदि हिरणों, खरगोश, लोमड़ी, भेड़, बकरी, सुअर, गाय, बैल तथा भैंस आदि पशुओं की हड्डियां मिली थी। इनमें से जंगली तथा पालतू दोनों ही प्रकार के पशुओं की हड्डियां मिली हैं। नेवला, कछुआ तथा मछली की हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार प्रथम उपकाल के लोगों का आर्थिक जीवन जंगली पशुओं के शिकार तथा पशुपालन पर आधारित प्रतीत होता है। रेखाचित्र 5, बागोर लघु पाषाण उपकरण वी एन मिश्र 1973 के सौजन्य से। पृष्ठ संख्या 276। प्रथम उपकाल के लोग रहने के लिए जो झोपड़ियां बनाते थे उनके फर्श का निर्माण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से करते थे। ऐसी संभावना है कि झोपड़ियां बांस, बल्ली तथा घास फूस से बनाई जाती थी। इस उपकाल से यह मानव कंकाल प्राप्त हुआ है, जिसे पश्चिम पूर्व दिशा में सिर पश्चिम की ओर करके चित लिटा कर आवास क्षेत्र के अंदर ही दफनाया गया था। यह कंकाल 17 से 19 वर्ष की वयस्क आयु वाली महिला का है। बागोर के द्वितीय उपकाल का सांस्कृतिक जमाव 30 सेमी से 50 सेमी के बीच में मिला है। इसको प्रथम उपकाल के ही सातत्य के रूप में स्वर्णकार किया गया है। यद्यपि लघु पाषाण उपकरण इस उपकाल में भी चलते रहे, किंतु उनकी संख्या में उत्तरोत्तर कमी दृष्टिगोचर होती है। पशुओं की जो हड्डियां मिली हैं उनमें से कुछ जंगली पशुओं की और कुछ पालतू पशुओं की हैं। भेड़, बकरी तथा गाय, बैल प्रमुख पालतू पशु थे। इन लोगों का जीवन आखेट एवं पशुपालन पर आश्रित था। इस उपकाल में उत्कीर्ण अलंकरण से युक्त हस्त निर्मित मृदभांड तथा ताम्र उपकरण प्रचलित हो गए थे। द्वितीय उपकाल में संभवतः मेवाड़ तथा मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के संपर्क में बागोर के लोग आए। ताम्र उपकरणों में एक भाला तथा तीन बाण उल्लेखनीय हैं। द्वितीय उपकाल के लोग भी घास फूस की बनी हुई झोपड़ियों में निवास करते थे, जिनके फर्श पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से निर्मित थे। झोपड़ियों के फर्श पर पत्थर के हथौड़े, सील लोढ़े, गोलियां तथा गदा शेष प्राप्त हुए थे। चित्र 6, बागोर ताम्र बाणाग्र द्वितीय उपकाल उपकरण बीएन मिश्र 1973 के सौजन्य से। पृष्ठ संख्या 277, द्वितीय उपकाल से तीन मानव कंकाल मिले हैं, जिन्हें पूर्व पश्चिम दिशा में मुड़ी हुई अवस्था फ्लेक्स्ड पोजीशन में लिटाकर आवासक क्षेत्र के अंदर ही दफनाया गया था। द्वितीय उपकाल में मृतकों को दफनाने के लिए भिन्न दिशा का चयन किया गया था। हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन, धातु के उपकरण, आभूषण तथा पशुओं की हड्डियां अंत्येष्टि सामग्री के रूप में रखी गई थी। 1 से लेकर 8 तक मिट्टी के बर्तन रखे हुए मिले हैं, जिनमें संभवतः खाद्य पदार्थ भरकर अर्पित किए गए थे। द्वितीय काल के 2 शवाधानों से 5 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक भाला, 3 बाड़ तथा 1 तकुआ नुमा तांबे की क्षण रॉड है। तांबे के बने हुए तीनों बाड़ त्रिभुजाकार हैं तथा प्रत्येक के आधार के ऊपर 2 समानांतर छेद हैं। एक मानव कंकाल के गले में 36 गुरियों की बनी हुई एक माला पड़ी हुई मिली है, जिसकी अधिकांश गुरियां पत्थर की तथा कतिपय हड्डी की बनी हुई हैं। 3 कंकालों में से एक लगभग 7-8 वर्ष के बच्चे का था, शेष 2 कंकाल वयस्कों के थे, जिनमें से एक स्त्री तथा एक पुरुष का था। द्वितीय उपकाल में संभवतः कृषि तथा पशुपालन का बागोर में प्रचलन हो गया था। लघु पाषाण उपकरणों के साथ ही तांबे के बने हुए उपकरण प्रयुक्त होने लगे थे। इन उपर्युक्त बातों को देखते हुए इस उपकाल को मध्य पाषाणिक की अपेक्षा ताम्र पाषाणिक कहना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। बागोर के द्वितीय काल को प्रारंभ में तृतीय काल कहा गया था। द्वितीय सांस्कृतिक काल तथा प्रथम काल के बीच में समय का एक लंबा अंतराल था। ऐसा संभव है कि प्रथम काल के बाद यह पूरा स्थल उजड़ गया हो, इसके बाद पुनः कभी यहाँ पर लोग आबाद हुए हैं। द्वितीय सांस्कृतिक काल में आवासक क्षेत्र बागोर के मध्यवर्ती भाग तक ही सीमित था। इस काल का जमाव 35 सेमी से 75 सेमी के बीच मिला है। इस काल से लघु पाषाण उपकरण तथा पशुओं की हड्डियां बहुत कम संख्या में मिली हैं। इस काल के मृदभांड पूर्णतः चाक निर्मित है। लौह उपकरण कांच के मनखे तथा मिट्टी से बनी हुई इमारतें इस काल की अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं। इस काल से एक मानव कंकाल मिला है, जिसे उत्तर दक्षिण दिशा में चित्त लिटाकर दफनाया गया था। यह कंकाल 40 से 42 वर्ष की किसी महिला का है। इस कंकाल के मेरुदंड के सातवें ग्रीवा कशेरुक में हरे रंग एक धब्बा था, जो किसी धातु के पुरावशेष के संपर्क का परिणाम था। इसको रासायनिक परीक्षण के लिए MS विश्वविद्यालय बड़ौदा के KTM हेगड़े के पास भेजा गया। कंकाल की गर्दन में चिपके हुए धातु के उस टुकड़े की सफाई करने पर ज्ञात हुआ कि वह मुस्लिम काल का एक सिक्का है। यह सिक्का कंकाल में जिस स्थिति में चिपका हुआ था, इससे इस बात की संभावना बहुत कम है कि यह ऊपर से बाद में प्रविष्ट हो गया हो। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है पृष्ठ संख्या 278 कि यह ऊपर से बाद में प्रविष्ट हो गया हो। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल की द्वितीय उपकाल के बाद यह पूरा स्थल निर्जन हो गया और मध्य पाषाण काल में यहाँ पर लोग पुनः आबाद हुए। बागोर के प्रथम काल के दोनों उपकालों की तिथि निर्धारण के लिए रेडियो कार्बन तिथियाँ उपलब्ध हैं। 5 में से 3 तिथियां प्रथम उपकाल तथा 2 तिथियां द्वितीय उपकाल से संबंधित हैं। ये सभी तिथियां हड्डियों, बोन कार्बोनेट के नमूनों पर आधारित हैं। प्रत्येक नमूने की 2 तिथियां टाटा इंस्टीट्यूट द्वारा निकाली गई थी। प्रथम तिथि की गणना 5568 ±30 तथा कोष्टक में अंकित द्वितीय तिथि की गणना 5730 ±40 वर्ष रेडियो कार्बन के अर्ध जीवन के समय मान पर आधारित है। TF 7 लाख टीएफ 78,67,245 प्लस माइनस 200, 6,430 प्लस माइनस 200। टीएफ 1,75,620 प्लस माइनस 125, 5,785 प्लस माइनस 130। टीएफ 1,012 प्लस माइनस 5,090 प्लस माइनस 85, 5,325 प्लस माइनस 90। टीएफ 1,54,94,585 प्लस माइनस 105, 4,715 प्लस माइनस 105। टीएफ 1,53,935 प्लस माइनस 90, 4,060 प्लस माइनस 90। टीएफ 1,006 से उपयुक्त सभी पांचों तिथियां आद्य पूर्व बिफोर प्रेजेंट में हैं तथा असंशोधित हैं। प्रथम उपकाल से संबंधित तिथियां मध्यवर्ती स्तरों से संबंधित हैं, इसलिए सबसे निचले स्तर इस आधार पर कुछ अधिक प्राचीन माने जा सकते हैं। अतः प्रथम उपकाल का समय 5000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के बीच में तथा द्वितीय उपकाल का समय 2800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में निर्धारित किया गया है। द्वितीय काल का समय प्राप्त पुरावशेषों के आधार पर 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के मध्य निश्चित किया गया है, क्योंकि इस काल से मौर्य तथा कुषाण काल के मिट्टी के बर्तनों से मिलते जुलते बर्तन मिले हैं, किंतु मध्य काल के एक सिक्के के मिल जाने से अब इसका समय मध्य काल माना जा सकता है। गुजरात के भी प्राय सभी क्षेत्रों मुख्य भाग प्रायद्वीप तथा कच्छ से मध्य पाषाणिक पुरास्थल ज्ञात है। यद्यपि रॉबर्ट ब्रूसफुट के समय से ही गुजरात में मध्य पाषाण काल के उपकरणों के विषय में जानकारी थी, किंतु सन 1941 में एसडी सांकलिया द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए अन्वेषण के फलस्वरूप गुजरात में मध्य पाषाण काल से संबंधित गंभीर अनुसंधान का काल उपयुक्त वर्ष से प्रारंभ हुआ। साबरमती नदी की पूर्व दिशा में स्थित अखाज, बलसाणा, हीरपुर तथा लंगनाज का उन्होंने उत्खनन कराया, जिनमें से लंगनाज का उत्खनन सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। साबरमती, माही, ताप्ती तथा नर्मदा की घाटियों में स्थित गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों से इस समय तक लगभग 100 से अधिक पुरास्थल ज्ञात है। रेत के टीलों तथा तटवर्ती पृष्ठ संख्या 279 क्षेत्रों में भी कई पुरास्थल स्थित हैं। दक्षिण में रेत के टीले पर स्थित पावागढ़ तथा समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में स्थित मिताली का इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है। लंगनाज के अतिरिक्त पंचमहल जिले में तरसंग शिलाश्रय, मेहसाणा में लोटेश्वर, खेड़ा में स्थित कनेवाल, मेहसाणा में रतनपुर, अहमदाबाद में उनरेल, साबरकांठा में धमसूरा और जामनगर में पिठऊ मध्य पाषाण काल के पुरास्थल हैं जिनका उत्खनन हुआ। लंगनाज अक्षांश 23 डिग्री 27 इंच उत्तर, देशांतर 74 डिग्री 32 इंच पूर्व। गुजरात का बहुचर्चित मध्य पाषाणिक पुरास्थल है, जिसकी खोज भारतीय प्रागैतिहासिक अभियान दल ने सन 1941 में की थी। सन 1942 से सन 1963 के बीच दक्कन कॉलेज पुणे तथा एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा ने समय समय पर लंगनाज का कुल मिलाकर 7 बार उत्खनन कराया। एसडी सांकलिया के अतिरिक्त बी सुब्बाराव तथा केयूआर कनेडी ने यहां पर उत्खनन का संचालन किया। बालू के टीले पर स्थित होने के कारण इसके स्तरों का क्रम सुनिश्चित करना अपने आप में एक कठिन समस्या है। लंगनाज में 1 मीटर से लेकर 2.50 मीटर तक मोटा सांस्कृतिक जमाव मिला है। रेखाचित्र 6 लंगनाज पुरातात्विक जमाव का अनुरेख सांकलिया 1974 के सौजन्य से पृष्ठ संख्या 280, जिसे 3 उपकालों में विभाजित किया गया है। प्रथम उपकाल से पशुओं की हड्डियों तथा मानव संधान एवं यदाकदा मृदभांड प्राप्त हुए हैं। लघु पाषाण उपकरण 90 सेमी से 1.5 शून्य मीटर के जमाव में ही विशेष रूप से मिलते हैं। द्वितीय उपकाल से भी लघु पाषाण उपकरण पशुओं की हड्डियां आदि बहुसंख्या में प्राप्त हुई हैं। क्वार्टजाइट पत्थर पर निर्मित एक गदा शीर्ष तथा क्लोराइट पाषाण की नव पाषाणिक दो कुल्हाड़ियां एवं एक प्रस्तर हथौड़ा द्वितीय उपकाल से प्राप्त उल्लेखनीय पुरावशेष है। द्वितीय उपकाल से सबसे ऊपरी स्तर से तांबे का चाकू मिला है। मिट्टी के बर्तन ठीक से पके न होने के कारण अत्यंत भंगुर हैं। तीसरे उपकाल में मिट्टी के बर्तनों की संख्या बढ़ जाती है। पुच्छल एक लौह बाण, प्रस्तर की एक गुड़िया तथा सील का एक टुकड़ा तृतीय उपकाल से मिले हैं। तालिका लंग नाच के मध्य पाषाणिक उपकरण, उपकरण का नाम क्रोड, संख्या 70%, 5.21। उपकरण का नाम क्रोड कतरन फलक, संख्या 30%, 1.53। उपकरण का नाम फलक, संख्या 1117%, 85.90। उपकरण का नाम ब्लेड, संख्या 59%, 4.67। उपकरण का नाम कुंठित ब्लेड, संख्या 5%, 0.38। उपकरण का नाम चांद्रिक, संख्या 13%, 1.00। उपकरण का नाम त्रिभुज, संख्या 3%, 0.00023। उपकरण का नाम समलंब चतुर्भुज, संख्या 1%, 0.00107। उपकरण का नाम खुरचनी स्क्रेपर, संख्या 2%, 0.00215। उपकरण का नाम बेधक, संख्या 1%, 0.00107। उपकरण का नाम अवघात अवपाती फलक, संख्या 9%, 0.69। योग 1300%, 98.48659। लंगनाज के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्य पाषाणिक उपकरण मुख्यतः इसके प्रथम उपकाल से प्राप्त हुए हैं। उपकरणों का निर्माण प्रधानतः चर्ट, क्वार्ज, कार्नेलियन तथा अगेट पर किया गया है। पृष्ठ संख्या 281, कुंठित पार्श्व वाले ब्लेड, त्रिभुज, चांद्रिक, स्क्रेपर आदि प्रमुख उपकरण हैं। लंगनाज के लघु पाषाण उपकरणों में सबसे अधिक संख्या फलकों 1117 की है। लंगनाज के उत्खनन से प्राप्त मध्य पाषाणिक उपकरणों की कुल संख्या 1300 है। लंगनाज के पुरास्थल पर उपकरण निर्माण के लिए पाषाण उपलब्ध नहीं थे, इसलिए ऐसी संभावना प्रकट की गई है कि उपकरण निर्माण की सामग्री कहीं बाहर से लाई जाती रही होगी। लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त जो अन्य पाषाण उपकरण ऊपरी स्तरों से मिले हैं उनके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। लंगनाज के लोगों की अर्थव्यवस्था पशुओं के शिकार पर आधारित प्रतीत होती है। लंगनाज के उत्खनन से जिन पशुओं की हड्डियां मिली हैं उनमें गाय, भैंस, हिरण, जंगली सुअर, बारहसिंघा, नीलगाय, गैंडा तथा भेड़िया आदि प्रमुख हैं। सभी हड्डियां जंगली पशुओं की हैं। पशुओं को पालतू बनाने के संकेत नहीं परिलक्षित होते हैं। कुंतक कृतंतक जीवों में चूहे, गिलहरी तथा नेवले की हड्डियां मिली हैं। ये सभी घास के मैदान में पाए जाने वाले पशु तथा जीव जंतु थे। चित्र 7, लंगनाज मुड़ी हुई अवस्था में समाधिस्थ मानव कंकाल सांकलिया 1974 के सौजन्य से। लंगनाज के उत्खनन से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 13 को पैर मोड़कर दाहिनी करवट लिटाकर दफनाया गया था। 14वां कंकाल विस्तीर्ण मुद्रा में दफनाया गया था। 14 में से 13 कंकालों के सिर पूर्व दिशा और पैर। पृष्ठ संख्या 282, पश्चिम दिशा की ओर करके दफनाए गए थे। क्या शवाधानों के इस दिक स्थापन में परिवर्तन के पीछे भिन्न मानव प्रजातीय पृष्ठभूमि का हाथ था? सभी मानव कंकाल पूर्ण सुरक्षित अवस्था में नहीं मिले हैं। कंकाल प्रायः 1, 2, 6, 10 तथा 13 की मात्र कतिपय मानव अस्थियां ही प्राप्त हुई थी और वे भी अपनी मूल स्थिति में नहीं थी। मृतकों के साथ अंत्येष्टि सामग्री ग्रेव गुड्स दफनाते समय रखी गई थी अथवा नहीं, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। तथापि इस बात की संभावना है कि कतिपय मृतकों के साथ पशुओं की हड्डियां, मनके तथा डेंटेलियम की सीपियां दफनाई गई रही होगी। चित्र 8, लंगनाज मुड़ी हुई अवस्था में समाधिस्थ पुरुष एवं स्त्री कंकाल सांकलिया 1974 के सौजन्य से। लंगनाज के 14 कंकालों में केवल 8 मानव कंकाल के लिंग का निर्धारण हो पाया है। इनमें से 5 कंकाल निश्चयतः और 1 संभवतः पुरुषों के हैं। 2 कंकालों में एक निश्चित रूप से तथा दूसरा संभावित रूप से स्त्री के हैं। कंकाल संख्या 5 के बाएं हाथ की टूटी अंतः प्रकोष्ठिका के जोड़ में गांठ मिली है। कंकाल 12 के दांतों में दंतक क्षय कैरिस के प्रमाण मिले हैं। केवल 4 कंकाल, 3 तीसरा, 5वां, 12वां और 14वां की लंबाई की माप हो सकती है। इनमें से पुरुष कंकाल 3रा, 5वां तथा 14वां की लंबाई क्रमशः 167 सेमी, 174 सेमी तथा 166.52 सेमी है। एकमात्र नारी कंकाल 12वां की लंबाई 158 सेमी है। इस प्रकार लंगनाज के पुरुष पृष्ठ संख्या 283 तथा स्त्री औसत कद के थे। कपाल गुहा का औसत मान 1183 सीसी से 1430 सीसी है। कतिपय कंकालों के कपालों के टूटे होने के आधार पर यह संभावना प्रकट की गई है कि लंगनाच के मध्य पाषाणिक लोहक नर मांस भक्षी थे, लेकिन KUR केनेडी ने इस कोटि के सभी कंकालों का विधिवत अध्ययन करके यह अभिमत प्रकट किया है कि मिट्टी के तापक्रम एवं आर्द्रता तथा ऊपरी निक्षेप के दबाव के परिणाम स्वरूप कपाल टूट गए हैं। इस प्रकार कपालों के क्षत विक्षत होने के पीछे प्राकृतिक शक्तियों का हाथ माना जा सकता है। रेखाचित्र 9, लंगनाज लघुपाषाण उपकरण सांकलिया 1974 के सौजन्य से। पृष्ठ संख्या 284, लंगनाज के कंकालों के अध्ययन के आधार पर उनकी प्रजातीय रेशियल विशेषताएं निर्धारित करने के भी प्रयास किए गए हैं। इरावती कर्वे का विचार है कि इन कंकालों को निग्रो प्रजाति के तत्व विद्यमान है। इनके वंशज मिस्र के थे। सोफी एरहार्ट को इन कंकालों में भूमध्य सागरीय मानव प्रजाति के तत्व दृष्टिगत हुए। श्रीलंका की वेद्दा नामक मानव प्रजाति के साथ इनके मिश्रण का सुझाव दिया गया है। डीएच गार्डन का मत है कि इन कंकालों में पूर्वी अफ्रीका की हेमेटिक मानव प्रजाति की कतिपय विशेषताएं दिखलाई पड़ती हैं। इस प्रकार इन मानव कंकालों की प्रजाति स्थिति के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। लंगनाज की मध्यपुरा पाषाणिक संस्कृति के तिथिक्रम के विषय में यही कहा जा सकता है कि इसका संबंध मध्य पाषाण काल के परवर्ती चरण से है, क्योंकि ज्यामितीय उपकरण एवं मृदभांड यहाँ से मिले हैं। लंगनाज से यह एक रेडियो कार्बन तिथि भी ज्ञात है जो TF744 2040 प्लस माइनस 110 ईसा पूर्व है। महाराष्ट्र प्रदेश में मध्य पाषाण काल के अनुसंधान की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। अभी तक धरातल से प्राप्त मध्य पाषाणिक उपकरण की ही ज्ञात है, क्योंकि इस संस्कृति से संबद्ध किसी पुरास्थल का उत्खनन नहीं हुआ है। KRU टॉड को मुंबई के पास स्थित खांडीवली के से मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले थे, जिनका विवरण सन 1950 में प्रकाशित किया गया। पैठण, नासिक, धुले, अहमदनगर तथा पुणे आदि जिलों में मध्य पाषाणिक अनेक पुरास्थल खोजे गए हैं। कोंकण के समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में ठाणे जिले में उल्लास तथा अंबा नामक नदियों के तटों पर कई मध्य पाषाणिक पुरास्थल स्थित हैं। महाराष्ट्र में लघु पाषाण उपकरणों का निर्माण मुख्यतः चर्ट, चालसेदनी, अगेट तथा क्वार्ज पर किया गया है। समानांतर एवं कुंठित पार्श्व वाले ब्लेड, चांदिक त्रिभुज, वेधक, वाड़ाग्र तथा स्क्रेपर आदि प्रमुख उपकरण मिलते हैं।